नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। राज्य विधानसभा के बजट सत्र का आज दूसरा दिन, सदन में पक्ष और विपक्ष के बीच हुई नोकझोंक। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में आज सख्त भू कानून को मंजूरी मिली। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, यह ऐतिहासिक कदम राज्य के संसाधनों, सांस्कृतिक धरोहर और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करेगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने आज अपना पदभार ग्रहण किया और अल्मोड़ा और रुद्रप्रयाग में बोर्ड परीक्षा को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए सभी तैयारियां पूरी। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आशुतोष उनियाल, और अब समाचार विस्तार से। विधानसभा में आज बजट सत्र का दूसरा दिन है। आज सुबह सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने शोर शराबा किया। सदन में अभद्र टिप्पणी को लेकर संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के बीच नोकझोंक हुई। इसके बाद सदन में दोनों पक्षों के बीच जमकर बहस हुई। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हस्तक्षेप के बाद दोनों पक्ष शांत हुए। देहरादून में आज हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में सख्त भू कानून को मंजूरी दे दी गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि प्रदेश की जनता की लंबे समय से उठ रही मांग और उनकी भावनाओं का पूरी तरह सम्मान करते हुए आज कैबिनेट ने सख्त भू कानून को मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि यह ऐतिहासिक कदम राज्य के संसाधनों, सांस्कृतिक धरोहर और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करेगा, साथ ही प्रदेश की मूल पहचान को बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार जनता के हितों के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से यह स्पष्ट हो जाता है कि राज्य सरकार अपने राज्य और संस्कृति की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर यह कानून प्रदेश के मूल स्वरूप को बनाए रखने में भी सहायक सिद्ध होगा। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि कांग्रेस समान नागरिक संहिता यूसीसी में लिव इन रिलेशन प्रावधान का विरोध करते हुए कल विधानसभा का घेराव करेगी और राष्ट्रव्यापी आंदोलन के माध्यम से आम जनता की राय एकत्र करेगी। देहरादून में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक फॉर्म का प्रारूप तैयार कर इन प्रावधानों पर जनता को जागरूक करते हुए राय मांगेगी। उसे ज्ञापन के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजा जाएगा। कांग्रेस अध्यक्ष ने आम लोगों से अपील की है कि ऑनलाइन भी अपनी राय साझा करें। इसके लिए कांग्रेस ने एक लिंक भी जारी किया है। उधर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि यूसीसी प्रदेश में आम जन और महिलाओं को सुरक्षा देने वाला कानून है और इसे लेकर कांग्रेस कुतर्क कर रही है। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि महिलाओं के साथ फरेब और दूसरे बहाने से कई घटनाएं सामने आई हैं, जिससे उनके पंजीकरण के बाद सुरक्षा कवच पहनाने के लिए यह कानून लाया गया है। इससे संस्कृति को कोई नुकसान नहीं, बल्कि महिलाएं कानूनी रूप से समृद्ध होंगी। कुमाऊं विश्वविद्यालय में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जैव फ्लॉक विधि का प्रयोग करते हुए उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है। विश्वविद्यालय ने इस तकनीक से 30 किलोग्राम की मछली का सफल उत्पादन करने के साथ ही इसका विक्रय भी सफलतापूर्वक किया है, जो इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। जैव फ्लॉक विधि सीमित स्थान में अधिक मछली उत्पादन की क्षमता प्रदान करती है और साथ ही जल की गुणवत्ता बनाए रखने में सहायक होती है। कुमाऊं विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर दीवान रावत ने बताया कि इस केंद्र की स्थापना 3 प्रमुख उद्देश्यों को ध्यान में रखकर की गई थी। पहला, विद्यार्थियों को जैव फ्लॉक तकनीक के माध्यम से सतत मत्स्य पालन का प्रशिक्षण देना। दूसरा, नैनीताल की विलुप्त हो चुकी स्थानीय मछली स्नो ट्राउट को पुनर्जीवित करना। तीसरा, उन सभी लोगों को प्रशिक्षित करना जो आत्मनिर्भरता के लिए इस तकनीक का उपयोग करना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि वर्तमान में जैव फ्लॉक विधि से उत्पादित मछली की गुणवत्ता उच्च स्तर की पाई गई है और इसे बाजार में अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय भविष्य में इस तकनीक को और अधिक विकसित करने तथा अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए कार्य कर रहा है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हरिद्वार में गंगा किनारे व अन्य जगहों से कुष्ठ रोगियों को हटाने के मामले में स्वतः संज्ञान लेने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद सरकार को कुष्ठ रोगियों के लिए शेल्टर होम बनाने का काम 3 माह में पूरा करने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति आशीष नैथानी की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार देहरादून के एक एनजीओ ने न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को पत्र भेजा था कि सरकार ने 2018 में गंगा नदी के किनारे व अन्य स्थानों से अतिक्रमण हटाने के दौरान यहां बसे कुष्ठ रोगियों को भी हटा दिया था। अब इनके पास न घर है और न ही रहने की कोई व्यवस्था है। सरकार की ओर से कहा गया है कि कुष्ठ रोगियों के पुनर्वास के लिए शेल्टर होम बनाए जा रहे हैं। सरकार की ओर से करीब 62 से 63 शेल्टर होम बनाए जाने की बात कही गई है। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने आज नई दिल्ली में अपना पदभार ग्रहण किया। कार्यभार संभालने के बाद अपने संदेश में श्री कुमार ने कहा कि राष्ट्र निर्माण के लिए पहला कदम मतदान है और भारत के प्रत्येक नागरिक को मतदाता बनना चाहिए।
राष्ट्र सेवा के लिए पहला कदम है मतदान, इसलिए भारत का हर नागरिक जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हों उन्हें मतदाता जरूर बनना चाहिए और मतदान अवश्य करना चाहिए। भारत के संविधान लोक प्रतिनिधित्व कानूनों, नियमों और उनके अंतर्गत जारी निर्देशों के अनुरूप चुनाव आयोग हमेशा मतदाताओं के साथ था, है और रहेगा।
21 फरवरी से शुरू होने जा रही उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद की बोर्ड परीक्षा को लेकर पीएम श्री राजकीय बालिका इंटर कॉलेज अल्मोड़ा में एक बैठक आयोजित की गई। इसमें परीक्षा केंद्र नियंत्रकों, व्यवस्थापकों और प्रधानाचार्यों के साथ जिला मुख्य शिक्षा अधिकारी व शिक्षा विभाग के अन्य अधिकारी शामिल हुए। हाईस्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षाओं के संचालन के लिए अल्मोड़ा जिले में 110 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। यहां 13,421 परीक्षार्थी हाईस्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड की परीक्षा देंगे।
हमारे जनपद में इस बार विगत वर्ष की भांति 110 इंटरमीडिएट हाईस्कूल परीक्षा केंद्र निर्धारित किए गए हैं। इसमें एक परीक्षा केंद्र हटाया गया और एक परीक्षा केंद्र अधिक है, तो कुल मिला के पिछले वर्ष की तरह 110 परीक्षा केंद्रों में परीक्षा होगी। इसमें 6,000 से अधिक हाईस्कूल के परीक्षार्थी और इसी तरह से इंटर के परीक्षार्थी हैं। कुल 13,421 परीक्षार्थी व्यक्तिगत और संस्थागत रूप में इस वर्ष जनपद अल्मोड़ा में परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा देंगे। इसकी जनपद स्तर पर पूरी तैयारी कर ली गई है। जनपद के पुलिस विभाग द्वारा भी आवश्यक सहयोग प्राप्त हो रहा है और निश्चित रूप से हमारी परीक्षा निर्बाध और शांतिपूर्ण से सम्पन्न होगी, इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है।
उप परीक्षा नियंत्रक उमेश चंद्र पांडे ने बताया कि बैठक के दौरान प्रश्न पत्र वितरित किए गए और बोर्ड परीक्षा के संचालन को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।
इसमें करीब 110 इसमें केंद्र है और उनके जो प्रिंसिपल और कस्टोडियंस जो आए थे उनको आज पेपर्स को आवंटित किया गया और जो आवश्यक दिशा निर्देश थे परीक्षा के संचालन के संबंध में वो दिए गए।
रुद्रप्रयाग जिले में भी बोर्ड परीक्षा को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मुख्य शिक्षा अधिकारी प्रमेंद्र सिंह बिष्ट ने परीक्षा केंद्र प्रभारियों, पर्यवेक्षक और अन्य विभागीय अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए हैं। जिले में हाईस्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षा के लिए 68 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 4 संवेदनशील और 64 सामान्य केंद्र हैं। मुख्य शिक्षा अधिकारी ने बताया कि बोर्ड परीक्षाएं 21 फरवरी से 11 मार्च तक एकल पाली में सुबह 10 बजे से अपराह्न 1 बजे तक होगी। इस वर्ष जिले में हाईस्कूल व इंटरमीडिएट में कुल 7,083 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं, जिसमें हाईस्कूल में 3,486 और इंटरमीडिएट में 3,597 परीक्षार्थी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के संकलन के लिए राजकीय इंटर कॉलेज रतूड़ा और राजकीय बालिका इंटर कॉलेज अगस्त्य मुनि को केंद्र बनाया गया है। उन्होंने बताया कि परीक्षा अवधि में किसी भी प्रकार की समस्या के समाधान के लिए मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय में कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है। यहां से सभी 68 केंद्रों की निगरानी की जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार और महाकुंभ मेला प्राधिकरण ने ऐसी अफवाहों को खारिज कर दिया है जिनमें दावा किया जा रहा है कि प्रयागराज में महाकुंभ मेले को 26 फरवरी से आगे बढ़ा दिया गया है। प्रयागराज के जिला मजिस्ट्रेट रविंद्र मादंड ने स्पष्ट किया कि सोशल मीडिया पर ऐसी अफवाह पूरी तरह निराधार है। महाकुंभ का समापन निर्धारित तिथि 26 फरवरी को होगा। शेष बचे दिनों में पवित्र संगम में आस्था की डुबकी लगाने और श्रद्धालुओं के सुचारू आवागमन के लिए व्यवस्था की जा रही है। जिलाधिकारी रविंद्र मादंड ने बताया कि महाकुंभ मेले का कार्यक्रम शुभ मुहूर्त के अनुसार जारी किया जाता है और यह पहले से तय होता है। श्री मादंड ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न दें। राज्य सरकार या जिला प्रशासन की ओर से मेले की अवधि बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य विधानसभा के बजट सत्र का आज दूसरा दिन, सदन में पक्ष और विपक्ष के बीच हुई नोकझोंक। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में आज सख्त भू कानून को मंजूरी मिली। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा यह ऐतिहासिक कदम राज्य के संसाधनों, सांस्कृतिक धरोहर और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करेगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने आज अपना पदभार ग्रहण किया। और अल्मोड़ा और रुद्रप्रयाग में बोर्ड परीक्षा को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए सभी तैयारियां पूरी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।